हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब सिद्धार्थ ने उसकी ठुड्डी को अपनी हथेली में पकड़ा और कठोर आवाज में बोला, मुझे बताओ मुझे तुम्हारे किस रूप पर विश्वास करना चाहिए। तब झलक लगभग चीखते हुए बोली, तुम्हारी दादी ने तुम्हें ड्रग्स दिए और तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। अरे मैं तो विक्टिम हूँ, सिर्फ विक्टिम। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है और इसके लिए तुम मुझे ही सजा देना चाहते हो। कभी झलक एकदम से लाचार हो जाती थी, कभी एकदम मासूम और कभी एकदम गुस्से से भर जाती थी। अब झलक के हर रूप को देखकर सिद्धार्थ को उसमें दिलचस्पी आने लगती है। तब सिद्धार्थ कोल्ड वॉइस में बोला, पैसा अब क्या कर सकता है, क्या नहीं, ये तुम्हें बहुत जल्द जल्द पता चल जाएगा। तब सिद्धार्थ उसकी ओर बिना किसी इमोशंस के देखकर बोला, तुम्हें ईमानदारी से यहीं रहना होगा, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें कोई ऑपरेशन के लिए ले जाएगा। तब सिद्धार्थ ने अपने उस हाथ को टिश्यू के टुकड़े से पोछा जिससे उसने झलक की ठुड्डी को पकड़ा था और उसको गंदी चीज की तरह कूड़ेदान में फेंका और वो मुड़ा और चला गया। तब झलक उसके पीछे चिल्लाती रह गई थी, सिद्धार्थ रुक जाओ, आप इस तरह से नहीं जा सकते हैं, तुम एक नंबर के कमीने हो, बदतमीज इंसान हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ये बोलते हुए झलक चीखती चिल्लाती रह गई थी, लेकिन वो आदमी बिना पीछे मुड़े रूम से बाहर निकलकर चला गया था और झलक उसे खुद को गालियां देने से नहीं रोक पाई। फिर वो सोफे पर वापस बैठ गई, अपने घुटनों के ऊपर धूल से हटाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बेशर्म कहीं का। और तभी झलक को लिफ्ट के दरवाजे बंद होने की आवाज़ आई। झलक ने सोचा, लगता है कमीन यहाँ से चला गया। अब झलक सोफे पर बैठ गई और उसने सोचा कि उस अब इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इसकी दादी को फ़ोन करना चाहिए। एक दादी ही हैं जो अब उसकी मदद कर सकती हैं। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फ़ोन गायब है। उसे याद आया कि सिद्धार्थ जब उसके करीब था, हो सकता है इस समय उसने उसका फ़ोन ले लिया हो। अब तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा चकरा गया था। वो सोचने लगी थी कि मैं यहाँ इस तरह से बैठकर मरने का इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मुझे यहाँ से किसी न किसी तरह से भगाना होगा। तो ये सोचते हुए वो उठी और उसने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और पाया कि अंदर जाने का और यहाँ से भागने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था, वो भी लिफ्ट से था और बाकी के दरवाजे बंद था। और इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने जाने से पहले दो बॉडीगार्ड को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था जो एकदम हट्टे कट्टे थे। वेल, तभी वहाँ से निकलने की प्लान बनाने के लिए झलक जल्दी ही बेडरूम में गई और उसे लकीली वहाँ पर एक लाइटर मिल गया। उसने अपने पीछे के चारों ओर टॉयलेट पेपर का एक रोल लपेटा और उसने उसमें आग लगा दी और छत पर जो एंटी फायर रखे हुए थे उन्हें पकड़ लिया। बस एक सेकंड में ही वो इस स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो गया और बिना रुके पानी का छिड़काव होना शुरू हो गया। बेडरूम से लेकर साइड रूम तक, फिर किचन और बाथरूम तक झलक ने सभी जगह आग लगा दी और उसके बाद स्मोक डिटेक्टर भी एक्टिव कर दिए थे। और तभी बाहर खड़े हुए बॉडीगार्ड ने जैसे ही अलार्म की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत वहाँ आए और बोले कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उन दोनों बॉडीगार्ड के चेहरे पर घबराहट थी। तब अपना सिर हिलाते हुए झलक ने उन्हें कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ बहुत देखकर मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ प्लीज, कुछ तो करो, यहाँ पर आग लगी हुई है, मुझे बचाओ। अब दोनों के दोनों गार्ड अंदर की तरफ भागे क्योंकि वहाँ झलक ने हर जगह पर सिस्टम चालू कर दिया था जिसकी वजह से धुआं पूरे कमरे में फैल चुका था। उसके बाद जल्दी जैसे ही वो गार्ड वहाँ से गए, झलक को राहत महसूस हुई और लिविंग रूम से भाग और सीधा उसने लिफ्ट से नीचे मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाया और नाइट शेड क्लब से भागकर उसने एक टैक्सी ली और सीधा वहाँ से निकल गई। और उसने डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले वो ओबेरॉय विला जाएगी और वहाँ जाकर बोन मैरो के बारे में अपने माता पिता से बात करेगी। अगर उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय उसे मुंबई छोड़ने और साथ ही साथ उसका बोन मैरो लेने पर मुआवजे के रूप में उसे 50 लाख रुपए देते हैं तो उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। पहले तो उसे पैसे के लेने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास केवल 5,000 रुपए थे, बाकी के पैसे वो ऑलरेडी सिद्धार्थ के अस्पताल का बिल भरने में खर्च कर चुकी थी। वेल, एक लंबे सफर के बाद जल्दी ही वो ओबेरॉय विला में पहुंच चुकी थी और जल्दी ही जैसे ही वो दरवाजे के बाहर गई, उसने घंटी बजाई। कुछ देर बाद विला का दरवाजा खोला और उसने देखा कि बड़ी ही खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए उसकी माँ उसके सामने खड़ी हुई थी। वो लगभग 50 साल की थी। उसने हरे रंग की कमर फिटेड और गर्दन साड़ी पहनी थी और साथ ही साथ अच्छी खासी हील पहनी थी, जिसमें वो काफी ज्यादा यंग और सुंदर दिख रही थी। एक्चुअली वो झलक की अपनी सगी माँ थी। तब झलक ने उनकी ओर देखकर मुंह बनाया और बिना समय गवाए बोली, आपके पति कहाँ हैं? मिस्टर ओबेरॉय कहाँ हैं? अब उसकी माँ चिढ़ गई और बोली, ये क्या तरीका हुआ इस तरह से बात करने का? तब झलक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माँ बाप उसे पसंद क्यों नहीं करते हैं, जबकि वो उनकी सगी औलाद थी। तब झलक ने अपनी माँ को गुस्से से घूरते हुए कहा, अच्छा मैं आपके पति का नाम नहीं पुकार सकती, तो ये बताइए कि तुम्हारे पति कहाँ है वो कमीनो इंसान, मुझे उससे बात करनी है। तब उसकी माँ उस पर गुस्सा होते हुए बोली, वाकई तुम एक नंबर की बदतमीज लड़की हो, जिसे बात तक करने की तमीज नहीं है। अब झलक ने एक मुस्कुराहट उनकी ओर दी और बोली कि एक्चुअली तमीज ना अपने माँ बाप के द्वारा सिखाई जाती है और ये बहुत मेरे लिए की, लेकिन मैं जिंदा हूँ और इसके लिए मुझे तमीज सिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके जन्म देने वाले माता पिता के साथ उसका इस तरह से दोबारा से मिलन होगा। वेल, अब सारी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। तब उसकी माँ गुस्से से उसे घूर कर बोली, वो घर पर नहीं है, बाद में आना, क्योंकि वो उसके साथ अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। झलक को उम्मीद थी कि उसकी माँ ऐसा ही कुछ करेंगी, इसलिए उसने फिर से दरवाज़ा खोला और सबसे पहले अंदर चली गई। अब मिसेस नैना ओबेरॉय उसे गुस्से से घूर कर बोली, झलक तुम ये क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। तभी आकांक्षा नीचे आई और बोली, मम्मा कौन आया है? और उसने जैसे ही झलक को देखा तो उसने कहा, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भले ही झलक के ये सब उसके अपने सगे रिश्ते थे, लेकिन वो सभी के सभी उससे बेहद नफरत करते थे। झलक के दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ था। उसकी आँखों के किनारे भीग गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी और वो आकांक्षा की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना को बचाने का इनाम वापस पाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। झलक की बात सुनकर उसकी माँ हंसने लगी थी और बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने मिस्टर सिद्धार्थ खुराना की जान बचाई है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सिद्धार्थ खुराना की जान मेरी बेटी आकांक्षा ने बचाई है। हालांकि झलक के सामने बैठी औरत उसकी अपनी माँ थी, लेकिन झलक की माँ जो विलासितापूर्ण जीवन जीने की आदत थी और एक छोटे शहर में पली बड़ी झलक को वो हमेशा नीची नजरों से देखती थी। उसे लगता था कि ये जंगली लड़की बेहद बदतमीज है, इसमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी बेटी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी आकांक्षा है, जिसे उसने पढ़ाया लिखाया और एकदम तमीज़दार बनाया है। तब आकांक्षा जल्दी से झलक को बोलती है, चुप रहो। कहीं ना कहीं आकांक्षा झलक को वहाँ देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे कहा था कि तुम चुप रहो, यहाँ से बाहर निकल जाओ। और फिर अपनी माँ से बोली, मम्मा इसे 50-60 हज़ार रुपये दे दो, इसे यहाँ से निकाल दो।
तभी नैना अपनी बेटी की ओर देख कर बोली, हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हूँ, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ और उसे यहाँ से निकाल देती हूँ। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मानिया।